ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। क्लास हिंदी में होगी तो आप लोग आगे आ सकते हो, पीछे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। गोपाल कहाँ है? हाँ, गोपाल कहाँ अपना? ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। निकालो। तो आज पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण से दशम स्कंद अध्याय 28 और श्लोक संख्या 48। निकालो इसमें। जो भी है मैं इसमें से कर लिया, ठीक है। हाँ, ओके, सॉरी। चैतन्यचरितामृत मद दलीला अध्याय 13, रथयात्रा के समय महाप्रभु का भावमय नृत्य नामक अध्याय से श्लोक संख्या 136। आहो च ते नलिननाभ पदारविन्दम् जोगेश्वरै हृदि विचिन्त्यम् अगाधबोधै संसारकूप पतिता उतरणा अवलंब गेहम जुषाम अपि मनसी उदयात सदा नः। आहुश्च ते नलिन नाभ पदारविन्दम् आहुश्च ते नलिन नाभ पदारविन्दम् जोगेश्वरै हृदय विचिन्त्यम् अगाधबोधै संसारकूपपतितो उतरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्युदयात् सदा न। आहुश्च ते नलिननाभपदारविन्दम् जोगेश्वरै हृदि विचिन्त्यमगाधबोधै संसारकूपपतितो उतरणावलम्बम् गेहं जुहासमपि मनस्योदया सदास्ता। गेहं जुषामपि मनस जुषा उदया सदा न। आहुश्चते नलिन नाभ पदार बिंदम जोगेश्वरै हृदि विचिन्त्य मगाध बोधै संसार कूप पतितो उतरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्युत इत्यासत असदान और कोई माता जी लोग आहू गोपियों ने कहा श्रीमती राधा रानी ने कहा च और ते आपका नलिननाभ हे भगवान जिसकी नाभि कमल के पुष्प जैसी है पदारविंदम चरण कमल जोगेश्वरी महान जोगियों के हृदय हृदय में विचिन्त्यम ध्यान करने योग्य है अगाध बोधई जो अति विद्वान दार्शनिक हैं संसार कूप भौतिक संसार रूपी अंधे कुएं में पतिता उन पतितों के उत्तरा उधार के लिए अवलंबन एकमात्र आश्रय गेहम पारिवारिक कार्यों में जुषाम व्यस्त अपि यद्यपि मनसी मनो में उद्यात जागृत हो सदा صدا، نہا ہمارے۔ گوپیاں اس پرکار انواد، گوپیاں اس پرکار بولی، ہے کمل ناب، جو لوگ بھوتک سنسار روپی گہرے کنویں میں گر چکے ہیں ان کے لیے آپ کے چرن کمل ہی ایک ماتر آشرے ہیں۔ آپ کے چرنوں کی پوجا تتھا ان کا دھیان بڑے بڑے جوگی تتھا ودوان دارشنک کرتے ہیں۔ ہم چاہتی ہیں کہ وہ ہی چرن کمل ہمارے ہردے میں بھی ادت ہو۔ یدپی ہم سبھی گوپیاں گرہستی کے کارجوں میں سلگ رہنے والی سامان्य استریاں ہیں۔ شری شری گور نتائے کی جائے، شری شری رادھا راش وہار للتا وشاکھا جب جائے، سیتا رام لکشمن ہنومان کی جائے۔ یہ ادھرن شریمد بھاگوتم 10:82-48 کا ہے۔ گوپیوں کو کبھی بھی کرم یوگ، گیان یوگ یا دھیان یوگ میں روچی نہیں تھی، وے تو ایک ماتر بھکتی یوگوں میں روچی رکھتی تھی۔ جب تک انہیں بادھ نہیں کیا گیا انہوں نے بھگوان کے چرن کملوں کا دھیان کرنا نہیں چاہا، پرتیوت وے ان چرن کملوں کو اپنے وکشستھلوں پر رکھنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی انہیں کھید ہوتا تھا کہ ان کے وکشستھل اتنے کٹھور ہیں، جس سے انہیں بھے تھا کہ کرشن اپنے کومل چرن کمر ان پر نہ رکھنا چاہے۔ جب ورنداون کے چراگاہوں کے بالو کے کن ان کے چرن کملوں میں گڑ جاتے تو گوپیوں کو ویدنا ہوتی اور وہ رونے لگتی۔ گوپیاں کرشن کو ہمیشہ اپنے پاس رکھ کر رکھنا چاہتی تھی، اس پرکار ان کے من کرشن بھاونا امرت میں مگن رہتے تھے۔ ایسی شدھ کرشن بھاونا کیول ورنداون میں ہی پرگٹ ہو سکتی ہے۔ اس پرکار سے چیتن مہاپربھو گوپی بھاو سے سنترپت اپنے من کو من کی بات بتانے لگے۔ ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय उन्मलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जगन्नाथ का लीला सब लोग सुनेंगे प्रभुदानंद महाराज से। रथयात्रा आज है। रथयात्रा का महत्व क्या है, क्यों रथयात्रा प्रारंभ हुआ, मैं उसी टॉपिक पर आज यह बात करूंगा। ऐसे इस पूरे अध्याय में चेतन चेतामृत के महाप्रभु के संकीर्तन नृत्य का वर्णन किया गया है। इसमें 209 प्यार हैं, तो सबको कवर करना तो मुश्किल होगा, लेकिन उसमें से कुछ एक भाग को मैं आज यहां पर वर्णन करूंगा। वह है श्रीमती राधा रानी का भाव रथयात्रा के समय। देखिए, रथयात्रा की तैयारी हो गई है। अलग अलग जगहों से विभिन्न प्रकार के लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करने आए और भगवान जगन्नाथ अपने श्री मंदिर से लक्ष्मी जी का परमिशन लेकर के अब बाहर आए। रथ का सजावट किया गया है, किस प्रकार से इन सब का वर्णन किया गया है। जब भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर सवार हो गए, इसमें रथ के सजावट का वर्णन किया गया है। اور جس راستے سے جگنناتھ جی کا رتھ جائے گا اس کا بھی برن کیا گیا ہے. بھگوان چیتنیہ مہاپربھو کے جتنے کیرتنیے تھے وہ لوگ کیرتن کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. بھگوان چیتنیہ مہاپربھو سبھی لوگوں کو الگ الگ ٹولیوں میں بانٹ دیے ہیں کہ کون کس ٹولی میں رہے گا. اس سمے ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا تو سب لوگ ساتھ میں مل کر کے کیرتن گاتے تھے. چار پانچ بھکت لوگ ایک ساتھ مل کر کے گاتے تھے اور بعد میں انیہ لوگ اس کو دہراتے تھے. کیرتن کی ویوستھا اس پرکار سے کی گئی تھی کہ سات ٹولی تھی اور سات ٹولی میں پرتیک ٹولی میں دو دو مردنگ اور چار کرتال تھے. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم شروع کیے جب رتھ یاترا بمبے میں تو یہ پورے ادھیائے کا ہم لوگ ادھیئن کیے تھے اور ٹھیک ویسے ہی کیے تھے, ایک مردنگ اور ساتھ میں چار کرتال. پرتھم رتھ یاترا پرارمبھ ہوا تھا شیواجی پارک سے اور گیا تھا گرگاؤں چوپاٹی. بیچ میں پریل میں رتھ ٹوٹ بھی گیا تھا, دو تین گھنٹہ لگا جگن آجی کی جیسی اچھا. اس سمے پہلے ایک رتھ تھا. تو اینی وے تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ کیسے ان دنوں ہم رتھ یاترا کے لیے تیاری کیے تھے. اور واسطو میں مردنگ ہی بجنا چاہیے. آج کل وہ ڈگ 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 والا کیا ہے نا, ہاں وہ افریقہ میں جا کر بجے ٹھیک ہے, یہاں پر مردنگ کام کرے گا. تو چار مردنگ ایک مردنگ کے ساتھ میں چار کرتال یہ پرنالی ہے. تو اس پرکار سے بھگوان چیتنیہ مہاپربھو ایسا ویوستھا کرائے تھے. تو بھگوان چیتنیہ مہاپربھو نے دیکھا جب بھگوان جگنناتھ اپنے رتھ پر سج گئے تھے تو مہاراج پرتاپ رودر جو وہاں کے راجا تھے وے گولڈن بروم جھاڑو لے کر کے جگنناتھ جی کے سامنے روڈ کو صفائی کر رہے تھے. یدپی راجا سمانک ویکتی تھے پھر بھی بھگوان کے لیے تچھ سیوا کر رہے تھے اور یہی کارن تھا کہ بھگوان چیتن مہاپربھو کے کرپا پاتر بن گئے. مہاپربھو سکھ پائلا سے سیوا دیکھیتے, مہاپربھو کرپا کیلا سے سیوا ہئیتے. جب بھگوان چیتن مہاپربھو دیکھے کہ پرتاپ رودر کس پرکار سے یہ سیوا کر رہے ہیں تو بھگوان چیتن مہاپربھو بڑے پرسن ہوئے اور پرتاپ رودر پر اپنا آشیرواد یا کرپا دیے. جب تک سے مہت کرپا نہ ہو, بھگوان کی کرپا نہ ہو, تب تک سے بھکتی کی پراپتی نہیں ہو سکتی ہے. اور مہت کرپا پراپت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چھوٹا سے چھوٹا, جسے لوگ چھوٹا کہتے ہیں, اس سیوا کو کیا جائے. یہ جو مندر جگنناتھ جی کا کے سامنے جو جھاڑو لگانے کا جو سیوا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ سیوا ہے, بہت امپورٹنٹ سیوا ہے. کیونکہ یہ جگرناتھ ہیں, یہ جگت کے ناتھ ہیں اور ہم سب لوگ ان کے سیوے ہیں, سیوک ہیں. چاہے کوئی بڑا ہو چاہے کوئی چھوٹا ہو, بھگوان کے درشٹی میں سب برابر ہیں. اور اس پرکار کا سیوا تو بھگوان کو اور وشیش بھاتا ہے. جیسے کہ اس پیار میں ہم لوگ ابھی سنیں कि भगवान चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए जब जगन्नाथ जी के सामने वे झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू से महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखी थे, महाप्रभु कृपा हईल से सेवा हई थे। और इसीलिए प्रणाली है वहां पर जगन्नाथपुरी में कि जो भी जब रथ यात्रा होता है तो जगन्नाथ जी के आगे राजा आकर के झाड़ू मारते हैं। इस संबंध में एक बड़ी सुंदर कथानक भी है कि एक पुरी के राजा थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम देव, राइट पसंद है ना। तो उनका विवाह फिक्स हुआ था कांचीपुरी यानी साउथ में दक्षिण काशी के राजा के पुत्र से। तो उस समय महाराज पुरुषोत्तम देव, स्वाभाविक है जब कोई नया नया शादी फिक्स होता है तो कोई भी प्रयोजन होता है घर में, कोई त्यौहार होता है तो हम लोग बुलाते हैं उन लोगों को। तो महाराज पुरुषोत्तम देव भी कांची नरेश को बुलाए थे और जब रथयात्रा प्रारंभ होने जा रहा था, एंगेजमेंट हो गया था, उनके पुत्री का नाम था पद्मावती, राइट महाराज। तो जब एंगेजमेंट हो गया था और जब रथ प्रारंभ होने वाला था तो कांची नरेश क्या देखते हैं कि पुरुषोत्तम देव झाड़ू मार रहे हैं रथ के सामने। तो उनको अच्छा नहीं लगा, ये सोचे कि तो भंगी आदमी है, राजा बन गया है लेकिन है भंगी है, तो मैं अपने बेटे का शादी भंगी से थोड़े करूंगा। और इस प्रकार से वे विवाह तोड़ दिए और उस समय लड़ाई छिड़ गई। इसके बाद तो भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा गए थे उस लड़ाई में लड़ने के लिए। महाराज पुरुषोत्तम देव पहले तो महाराज पुरुषोत्तम गुस्सा में आकर के लड़ाई किए, उस समय हार गए और आकर के जगन्नाथ के सामने लगे रोने कि मैं नहीं हारा हूं, आप हारे हो, आपकी हार है। तो भगवान ने कहा कि देखो पहले बार तो गुस्सा में गया था क्योंकि तुमको इंसल्ट फील हुआ था, लेकिन चलो इस बार आए और मैं भी आऊंगा लड़ाई करने के लिए। तो भगवान कह दिए और इधर प्रसन्नदेव तैयारी किए लड़ाई के लिए जा रहे थे। तो भगवान ऑलरेडी कृष्ण और बलराम चले गए थे और एक बुढ़िया थी जो छाछ बेच रही थी, तो उससे ये लोग छाछ पिए और अपना जो बहुमूल्य अंगूठी था वो दे दिए और कहे जब राजा आएगा तो उसको तुम्हें दे देना और तुम्हारे छाछ का मूल्य राजा देगा। इधर पुरुषोत्तम देख रहे थे कि भगवान कहां रह गए, इस बार भी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर हार जाऊं मैं। देख भगवान कहां रह गए। तब तक से बुढ़िया आ गई राजा के पास और उनको अंगूठी दिखाई और कही कि एक काले और एक घोड़े पर दो जो गए, एक काले घोड़े पर बैठा हुआ था जो सफेद वर्ण का था और जो उजले घोड़े पर बैठा था वो काला वर्ण का था, वो लोग ये देकर गए कि आप पैसा दोगे। तो पुरुषोत्तम समझ गए, उस लाई में पुरुषोत्तम जी विजय हुए और राजा के पुत्री पद्मावती को लेकर के आए निमारका, पुत्री को लेकर के आए और अपने प्रधानमंत्री को दे दिए कि इसको अपने पास रखिए और अपने राज्य में देखिए, जो अच्छा कोई भंगी हो तो इसका शादी भंगी से करा दीजिएगा, क्योंकि उनको इंसल्ट किए थे कांची नरेश यही कहकर के मैं अपनी पुत्री का शादी भंगी से नहीं कराऊंगा। तो ये तो क्षत्रिय भाव था दोनों में, अपना जिद था, लेकिन बेचारी लड़की गलती किया था, इन दोनों के बीच में वो के पीछे ये लोग अपना अपना मान लेकर के बैठे थे अपने अहंकार से। तो उसने कहा कि मैं अपने पुत्री का हाथ, अपने पुत्री का हाथ मैं भंगी के हाथ में नहीं दूंगी, भंगी शादी नहीं करूंगी, और ये कहे कि मैं तुम्हारे बेटी के साथ ही भंगी से ही कराऊंगा। अब उसका गलती किया था। तो मंत्री को दे दिए प्रधानमंत्री को कि कोई अच्छा जो भंगी है अपने राज्य में, सबसे जो श्रेष्ठ भंगी है, उससे इसका शादी करा देना। मंत्री प्रधानमंत्री थे, बड़े समझदार थे, भगवान जगन्नाथ के कृपा पात्र थे, जगन्नाथ का कृपा समझ रहे थे, इसलिए होने वाली रानी को अपने घर पर रखे, सेवा सत्कार करते रहे, सम्मान करते रहे, अपनी पुत्री के समान रखे। और जब जगन्नाथ रथ यात्रा का दिन आया तो पुरुषोत्तम देव सज धज करके आए थे, भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने झाड़ू लगाने के लिए। तो इधर से ये प्रधानमंत्री जो थे राजकुमारी पद्मावती को खूब सजा धजा करके, नव विवाहिता के समान, जैसे श्रृंगार होता है विवाह के समय, खूब सजा धजा करके लेकर के आए। तुम्हारा पुरुषोत्तम जब देखे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस समय ये प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, इस पद्मावती को यहां क्यों लेकर के आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप इनको यहां क्यों लेकर के आ रहे हो। तो कहा कि महाराज आज इनकी शादी है। तो कहा शादी है, अरे मैंने आपसे कहा था कि कोई प्रधान भंगी हो तो उससे आप इसका शादी करा देना। तो मंत्री ने कहा कि महाराज मैं बहुत ढूंढा लेकिन आपसे बढ़कर कोई भंगी दिखाई नहीं पड़ा, आपसे बढ़कर कोई भंगी दिखाई नहीं पड़ा, इसीलिए मैं इसको लाया हूं। तो इस प्रकार से उनका शादी हुआ। तो मुझे एक कथा याद आ गया, जब रथ के सामने झाड़ू मारने वाला जो बात था, महाराज प्रताप रुद्र से भगवान चेतन महाप्रभु मिलना नहीं चाहते थे, वे राजा थे, लेकिन वे चूंकि जगन्नाथ जी का सेवा कर रहे थे, झाड़ू मार रहे थे, इससे चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हुए कि उन पर अपना कृपा दृष्टि बरसाए महाराज प्रताप रुद्र पर, और महाराज प्रताप रुद्र उनके एक इटर्नल एसोसिएट में से एक हो गए। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ में नृत्य गीत करते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु पूरा विशद वर्णन किया गया है कि जो सात टोली था, सात टोली में कौन व्यक्ति क्या करेगा, इवेंट मैनेजमेंट कोई सीखना चाहे तो चैतन्य महाप्रभु से सीखे। फर्स्ट क्लास का इवेंट मैनेजमेंट चैतन्य महाप्रभु किए थे कि कौन मृदंग बजाएगा, कौन करताल बजाएगा, कौन गाएगा, कितने लोग गाएंगे, इत्यादि इत्यादि पूरा वर्णन था। और भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस सातों टोली में जाकर के एक साथ में नाचते थे। ठीक पढ़ा जी, जिस प्रकार से रास के समय सब गोपियां देखती थी कि भगवान कृष्ण उनके साथ ही हैं, वैसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु एक साथ में सभी टीम में नाचते थे। सब लोग नहीं देख पा रहे थे चैतन्य महाप्रभु को कि कहीं सब टीम में नाच रहे हैं, जो उनके घनिष्ठ जो क्लोजेस्ट भक्त थे वे लोग देख पा रहे थे, और उसमें से एक थे प्रताप रुद्र भी, जिन पर चैतन्य महाप्रभु का कृपा हो गया था। कैसे कृपा हुआ था? ये हम्बुल सेवा से झाड़ू मारने का। तो हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि आश्रम सफाई करना, मंदिर सफाई करना, बाथरूम सफाई करना ये हमारा काम नहीं है, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। यदि हम तो इतना पढ़े लिखे हैं, नहीं, यदि किसी को कृपा प्राप्त करना है, किसी को कृपा प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा चीज है कि वेरी मिनिमल सर्विस जो है, छोटा से छोटा जो सेवा है, झाड़ू मारना हुआ, बर्तन सफाई करना हुआ, ये सब करें। इस प्रकार से चेतन महाप्रभु का कृपा प्राप्त होगा। एनीवे, आप लोग बाद में पढ़ लेना इस अध्याय को, मैं जो प्रसंग लेना चाहता हूं उस पर आना चाहता हूं। तो इस प्रकार से भगवान चेतन महाप्रभु भक्तों के साथ में नाच रहे थे, गा रहे थे। कुछ समय के बाद भगवान जगन्नाथ और चेतन महाप्रभु जुगलबंदी होने लगा। कभी वे चलते थे, ये रुक जाते थे, कभी ये चलते थे, वो रुक जाते थे। इस प्रकार से चल रहा था, इस प्रकार से चल रहा था। और चैतन्य महाप्रभु नाचते नाचते, नाचिते नाचिता प्रभु हैल भवान्तर हस्ततुली श्लोक पढ़े करी उच्चेश्वर। अब उन्हें वृंदावन का याद आया और उच्च स्वर में कुछ श्लोक पढ़ने लगे। तो प्रथम यह श्लोक पढ़े, जिस व्यक्ति ने युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था वही अब फिर मेरा स्वामी है। ये चैत्र मास की वही चांदनी रातें हैं, वही मालती पुष्पों की गंध है और कदम बन की वही मधुर वायु बह रही है। अपने घनिष्ठ संबंध में मैं वही प्रेम का हूं, फिर भी मेरा मन यहां सुखी नहीं है। मैं रेवा नदी के तट पर स्थित बेतसी वृक्ष के नीचे वापस जाने के लिए उत्सुक हूं, यही मेरी उत्कंठा है। यह जो भाव था, यह जो श्लोक था, श्रीमती राधारानी ने पढ़ा था, कहा था कृष्ण का दर्शन कर करके। भागवत महापुराण के दशम स्कंद के अध्याय 82 में इस श्लोक इस सब का वर्णन किया गया है। पद्यावली से श्लोक है कि जब एक समय की बात थी कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी, माता देवकी और अन्य सब अनिरुद्ध और कृतवर्मा के अलावा सब लोग द्वारिका से गए थे कुरुक्षेत्र। हस्तिनापुर से सब लोग आए थे, कुंती, द्रौपदी, पांचों पांडव, दुर्योधन, जय श्री श्री गौनिताय रथराज बिहार सीतारामचरण मान की जाए, और जितने भी हस्तिनापुरवासी थे सब राजघराना आया था। वैसे ही ब्रज से नंद बाबा, यशोदा मैया, भगवान कृष्ण के अन्य सखाएं और गोपियां सब आई हुई थी कुरुक्षेत्र में। कहा जाता है कि भगवान परशुराम जब क्षत्रियों का विनाश किए तो उनके रुधिर को, उनके खून को एकत्रित कर करके कुरुक्षेत्र में सात कुंडों में खून रखे क्षत्रियों का और वहां पर पाप विमोचनी यज्ञ किए। भगवान परशुराम पर कोई पाप लगने का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी वे जग किए पाप विमोचने का। इसीलिए आज भी लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं सूर्य ग्रहण के समय अपने पाप को धोने के लिए। वो तालाब का नाम क्या है महाराज? पांचकुंड। हाँ, पांचकुंड में। और वो जो तीर्थ स्थान है जहां पर ब्रह्मकुंड है, ब्रह्म सरोवर, वहां लो ज्योतिषर में ये स्थान है, तो वहां पर सब लोग आए थे। भगवान कृष्ण को देख करके सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। जितने हस्तिनापुरवासी थे वे लोग आपस में कृष्ण के विषय में बात कर रहे थे। इसका मतलब कि कृष्ण अभी हस्तिनापुर जाया करते थे, लेकिन ज्यादा नहीं जाते थे या नहीं गए थे, क्योंकि मथुरा से वे आ गए थे द्वारिका, और द्वारिका के बाद एक कुरुक्षेत्र आए थे। तो कृष्ण के विषय में हस्तिनापुर वाले सुने थे, तो आपस में बात कर रहे थे। और सर्वप्रथम बात जो प्रारंभ हुआ, वह प्रारंभ हुआ हस्तिनापुर वासियों और द्वारिका वासियों के बीच में, क्योंकि संबंध है कुंती जो है वो वसुदेव जी की बहन है, लेकिन उनका ससुराल जो है कुंती का वो है हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर से आई थी और वसुदेव जी द्वारिका से पधारे थे, साथ में देवकी थी। तो आपस में बात होने लगा, स्त्रियां आपस में बात करने लगी, देवकी से कुंती बात करने लगी कि आपको कितना कष्ट सहना पड़ा, कंस कितना आपको कष्ट दिया, कंस कितना आपके पुत्रों पर अत्याचार किया, और ये सब बातें कह रही थी। और उधर माता देवकी माता कुंती से कह रही थी कि आपको कितना दुख सहना पड़ रहा है, जवानी में ही आप विधवा हो गई, और ये सब बातें चल रहा था। स्त्रियों का यही बातें होता है प्राय, और क्या करेंगी, तो लोग यही बात करती रहती हैं। तो हालचाल हुआ, पुरुष लोग आपस में बात कर रहे थे, स्त्री आपस में बात कर रही थी। भागवतम में एक प्रसंग का बहुत सुंदर वर्णन है, जहां पर वसुदेव जी और कुंती का वार्ता हुआ है। बड़ा ही सुंदर वार्ता है, कुंती और वसुदेव भाई बहन मिले हुए हैं। कुंती बड़ी थी, वसुदेव छोटे थे, तो स्वाभाविक है कि छोटे बच्चे छोटे भाई होता है और बहन जब बड़ी होती है। अच्छा, पहले इतना प्रेम था भाई बहन में, कहना ही क्या था। और ये प्रेम जो था कोई स्पेशल प्रेम था, क्योंकि दोनों परिवार का संबंध के जो कारण थे वे कृष्ण थे। कुंती और वसुदेव जी के संबंध में कृष्ण बीच में थे, क्योंकि पांडवों के प्राण हैं कृष्ण, अर्जुन सखा हैं कृष्ण, और इधर वसुदेव नंदन हैं कृष्ण, देवकी नंदन हैं कृष्ण, तो कृष्ण दोनों के बीच के हैं। तो प्रगाढ़ बातें वहां पर हुई। उसके बाद जितने भी हस्तिनापुर वासी थे वे सब लोग कृष्ण का गुणगान कर रहे थे, कृष्ण और बलराम का गुणगान कर रहे थे। तब तक से ब्रजवासी लोग आए। अब ये जो बात हो रहा था द्वारका वासियों और हस्तिनापुर वासियों में, इन लोगों में रॉयल टाक हो रहा था। ये दो रॉयल फैमिली थी ना, हस्तिनापुर नरेश महाराज पांडु के पुत्र महाराज धृतराष्ट्र थे उसमें, वे लोग थे। और इधर द्वारिका नरेश महाराज सूरसेन का खंतान वसुदेव जी इत्यादि ये लोग थे, विष्णु भोज सब लोग साथ में थे। तो रॉयल टैक हो रही थी, लेकिन जब ब्रजवासी लोग आए तो इन रॉयल लोगों के बीच में वो लोग बेचारे फिट नहीं हो पाए, लेकिन अपने पट्टे कृष्ण को जानते थे। अरे गांव का लड़का भले शहर में चले जाए, गांव का ही है ना, जोर से कृष्ण इधर आओ यही कहेंगे ना, भले कितना ही बड़ा हो जाए इसी भाव में बात करेंगे। तो ब्रजवासी लोग अब कृष्ण पर टूट पड़े। जब कृष्ण देखे ब्रजवासियों को तो उनका प्रेम उमड़ आया। नंद बाबा, यशोदा मैया, अपने सखाओं से किस प्रकार से कृष्ण वाप किए, इसका वर्णन इस अध्याय में वर्णन किया गया है। बेचारी गोपियां शर्म के मारे साइड में थी। शहर के लड़कियों में उतना लज्जा नहीं होता है, आजकल तो बिल्कुल नहीं है। पहले चाहे आज भी गांव की स्त्रियों में बहुत लज्जा है। स्त्रियों का सबसे बड़ा सौंदर्य है वह है लज्जा। स्त्रियां अपने लज्जे के शान से जीती है और पुरुष अपने वीरता के शान से जीता है। स्त्रियों का शान मान जो है वह है लज्जा। गांव में आज भी स्त्रियां हैं, अपने सिर पर पल्लू जरूर रखेगी। देखिए चतुर्भुज प्रभु की वाइफ हैं, पीछे बैठी हुई हैं, आज भी पल्लू रखे हैं। अरे और तो और घूंघट रखती हैं स्त्रियां, दो चार बच्चे की मां हो जाएगी तो भी घूंघट रखेगी। लेकिन शहर की स्त्रियां शादी के समय पल्लू रखते हैं, उसके बाद में जीवन भर पल्लू नीचे। एक सारी जीवन है, करें क्या। एनीवे, तो मैं बात कर रहा था ब्रजवासियों का और गांव की स्त्रियों का। शहर की स्त्रियां पुरुषों से भी बात करती थी, करती भी हैं आज भी, लेकिन गांव की स्त्रियां आज भी पुरुषों से बात नहीं करती हैं। कल्चर आज भी है गांव में। तो ये गोपियां एक साइड थी बेचारी, बात नहीं कर रही थी। मैं इंडिया में हूं इसलिए बोल सकता हूं, अमेरिका में नहीं बोल सकता हूं, वो तो फिर लफड़ा हो जाएगा अमेरिका में बोलना। इंडिया अपना घर है, माताएं सब समझती हैं मैं क्या कह रहा हूं, सही बात कह रहा हूं, जानती हैं बेचारी। और नीलमणि की वाइफ हंस रही है, अमेरिका का नाम लिया तो अमेरिका से आई है बेचारी। एनीवे, तो गोपियां गांव की बेचारी और लज्जा में साइड में बेचारी थी। कृष्ण तो चाहते थे गोपियों के पास जाना उनसे बात करने के लिए, लेकिन करे क्या, ये सब नंद बाबा यशोदा मैया सब सुबाल सुदामा सब इधर घेरे हुए हैं। कभी कभी आफत हो जाता है, बड़ा हो जाना भी, बड़ा होने से लोगों से मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जो जितना बड़ा होता है उतना उसकी परेशानी बढ़ती जाती है। बेचारा छोटा रहता है, कोई मिल लेगा, कहीं सो लेगा चलेगा। अब जितना बड़ा हो जाए, हम ही लोगों को एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब बॉम्बे में रहते गांव जाते हैं तो मच्छर करता है तो तकलीफ होता है, गांव वालों को कोई तकलीफ नहीं है। तो कृष्ण का शरीर कृष्ण बाहर तो सब साथ में थे, लेकिन उनका मन बिल्कुल गोपियों के पास गया था। और किसी प्रकार से बहाना ढूंढकर निकल पड़े, वहां से चले गए गोपियों के पास। अब गोपियों के पास जा करके और कृष्ण गोपियों से बात कर रहे हैं। तो कैसे बात कर रहे हैं कृष्ण, मैं सोच रहा था कि एक दो श्लोक उसमें से मैं पढ़ूं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों के पास जा करके कृष्ण पहले मुस्कुराए और अपने मुस्कुराहट से अपने चितवन से गोपियों का आलिंगन किए और हंसते हुए गोपियों से कृष्ण पूछ रहे हैं, अपि अस्मरथा न सख्य स्वानाम अर्था चिकित्सया शत्रु पक्षमचेतस। अपि अस्मर्त अथा न, हे मेरे प्रिय, न मतलब आप लोग, हे मेरे प्रिय गोपियों, क्या तुम लोग अभी भी मेरा स्मरण करती हो? कहीं मैं तुम अब भूल तो नहीं गई हो ना? मेरा दुर्भाग्य रहा, स्वानाम अर्थ चिकित्सया, स्वानाम जो अपने लोग हैं यानी मथुरा वाले, जिनको बड़ी परेशानी हो रही थी, कंस बड़ा परेशान कर रहा था, उन लोगों का रक्षा करने के लिए गया था। स्वानाम अर्थ चिकित्सया, न चाहते हुए भी मैं उन लोगों के रक्षा के लिए वहां पर गया। फिर कहते हैं गताम चिरायितम शत्रु पक्ष क्षणम चेतसः, मैं कुछ दिन के लिए गया था, नहीं कृष्ण याद दिला रहे हैं कि मैं कहा था कि जा करके आ रहा हूं, तो ही बात क्लियर करें। मैं वैसे ही करने वाला था, मैं तो गया था कि जाकर के आ जाऊंगा, लेकिन शत्रु पक्ष बड़ा पहलवान था, बलवान था, तो दो दो हाथ लेने में बहुत समय लग गया, इसलिए थोड़ा देर हो गया। और मुझे आशा है कि आप लोग मुझे अभी भी याद करती होंगे। कृष्ण ने, हो सकता है कि आप लोग सोचती हो कि मैं तो अनग्रेटफुल हूं, लेकिन मैं करूं क्या? भगवान का ऐसा विधि विधान है कि चाहते हुए भी अपने प्रेमी लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। अब भगवान इसके बाद में गोपियों को शिक्षा देना प्रारंभ किए, ठीक वैसे ही शिक्षा देना शुरू किए जिस प्रकार से उद्धव को भेजे थे शिक्षा देने के लिए। देखिए, ज्ञान जो होता है मोह को, अज्ञानता को दूर करता है, लेकिन ये जो ज्ञान है वो भौतिक अज्ञानता को दूर कर सकता है, लेकिन जो इसमें प्रेम है, चाहे प्रेम का ही अज्ञानता क्यों न हो, उस प्रेम के अज्ञानता को ज्ञान से कोई नहीं समझा सकता है। छोटा बच्चा है, यदि पेशाब पैखाना कर दिया है, मल मूत्र कर दिया है, कीड़े उसे काट रहे हैं, वो मां के लिए रो रहा है, उसे मां का प्रेम चाहिए, और कोई आकर ज्ञान दे कि तुम्हें मल मूत्र में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें साफ करना चाहिए अपने को, वो बेचारा क्या समझेगा? उसे तो मां का प्यार चाहिए। वैसे ही इसे कृष्ण के प्रति प्रेम चाहिए। कोई भी ज्ञान क्यों न दे, तो उद्धव जी थे, ये साक्षात कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, तो भी ये गोपियां नहीं समझ पा रही हैं। तो वही उसी प्रसंग से हम आगे बढ़ रहे हैं, वहीं से यही श्लोक का महाप्रभु पढ़े बार बार, स्वरूप बिना अर्थ के हो ना जाने इहार। चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्रीमती राधारानी है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, साक्षात श्रीमती राधारानी है। और इस श्लोक को बार बार पढ़ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और स्वरूप दामोदर के अलावा और कोई इस श्लोक को नहीं समझ पा रहा है। ए श्लोक अर्थ पूर्वे करिया छे व्याख्यान, श्लोक के अभावार्थ करी संक्षेपे आख्यान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस श्लोक का व्याख्या पहले मैं कर चुका हूं, मधुलीला के प्रथम अध्याय में श्लोक संख्या 53, 77, 80, 82 और 84 में प्राय इसका व्याख्या हो चुका है। कहते हैं अब इसका मैं संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। पूर्वे छे कुरुक्षेत्र सब गोपी कृष्ण दर्शन पाया आनंदित मन, कृष्ण का दर्शन अब हुआ, सब लोग आनंदित थे। तो जैसे भागवतम से कहा कि अब कृष्ण गोपियों के पास गए हैं, और वही बात कृष्णदास कविराज कहते हैं। जगन्नाथ देखी प्रभु सही भाव उठिल, सही भाव अभिष्ट हैया धुआ गोआइल। अब इस प्रकार से जगन्नाथ को देख करके वह दृश्य आ गया, क्योंकि कृष्ण रथ पर सवार थे, रथ घोड़े से आए थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात के मणियों से बना हुआ वस्त्र धारण किए हुए थे। मोर मुकुट नहीं था, मुकुट था लेकिन हीरे जवाहरात के मणियों से जड़ा हुआ था, राजसी पोशाक था। और ये गोपियां देखी नहीं थी ऐसा चीज, वो तो कृष्ण को कृष्ण के रूप में यानी वृंदावन वाले कृष्ण के रूप में देखी थी। तो जगन्नाथ जी को देख करके भगवान चैतन्य महाप्रभु अस्तब्ध रह गए। और इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु अब कह रहे हैं, ठीक वही बात कह रहे हैं जो श्रीमती राधा रानी कृष्ण को देखकर कही थी। जब कृष्ण रथ पर सवार थे, कृष्ण को देख करके जो बात उस समय राधा रानी कही थी, वही बात ठीक यहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देखकर कह रहे हैं। अवशेषे राधा कृष्णे करे निवेदन सेई तुमी सेई आमी सेई नव संगम। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखकर इस प्रकार से कहते हैं, आप वही कृष्ण हैं और मैं भी वही राधा रानी हूं। हम पुनः एक बार मिल रहे हैं जैसे पहले मिले थे, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि वह भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इस समय भगवान वृंदावन भाव में नहीं थे, वे द्वारिका भाव में थे और राधा रानी वृंदावन भाव में थी। राधा रानी वृंदावन के भाव को प्रकट कर रही तथापि अमार मन हरे वृंदावन वृंदावन उदय कराओ आपन चरण। कहते यद्यपि हम दोनों वही हैं, लेकिन मेरा मन जो है वह वृंदावन में है, या मेरा मन ही वृंदावन है। दोनों अर्थ होगा, मेरा मन वृंदावन में है या मेरा मन वृंदावन है। यानी जिसके मन में कृष्ण निवास करते हैं उसका मन वृंदावन है, या जिसका मन वृंदावन में निवास करता है उसका मन वृंदावन है। तो राधा रानी कह रही है कि मेरी यही इच्छा है, वृंदावन उदय कराओ आपन चरण, आप कृपा करके अपने चरण कमलों को वृंदावन में रखें, यानी अपने मन को मेरे अपने चरण कमल अपने मन में रखें या वृंदावन चलें। इहां लोकारण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि तहां पुण्य रण्य भृंग पिक नाद सुनी। कहते हैं कुरुक्षेत्र में इतना भीड़ भड़क्का है, कौन किसको पहचानता है? यहां पर हाथी घोड़े घड़गड़ के रथ का आवाज आ रहा है, इतना बहुत डिस्टर्बेंस है, लेकिन वृंदावन यहां फूलों के बाग हैं। देखिए शहरों में आवाज ज्यादा होता है, गांव में कम आवाज होता है। शहरों में सब कंक्रीट है, वो कंक्रीट पर कोई आवाज आएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा पुनः। गांव में लता पता है, वृक्ष है, खेत है, सिवान है, उसके बाद फसल है, तो कोई आवाज भी आएगा तो पेड़ पत्ता में छिप जाएगा और रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, पुनः आएगा नहीं। लेकिन यहां पर आप बोलो, जैसे किसी गुफा में जाकर बोलो हरी बोल, तो गुफा बोलेगा हरी बोल है? आप लोग एक्सपीरियंस किया ना, ऐसे आवाज आता है। लेकिन जाकर खेत में जहां लहलाता हुआ खेत है, आजकल गेहूं का खेत है, आप वहां हरे कृष्ण बोलो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा, वो भी सुन रहा है, वो भी पचा रहा है। ये शहर वाले पचाते नहीं, देखते हैं तुरंत, वो गांव वाले पचा लेते हैं। यही अंतर है गांव में और अन्य में शहर में। तो कभी कभी गांव में जाना चाहिए प्रचार करने के लिए, वो आप उसका एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हो। तो राधा रानी कहती है यहां लोकारण्य, क्या बात राधा रानी कहते हैं, कहते हैं जंगल है, एक कुरुक्षेत्र लोक आरण्य, किसका जंगल है?
लोगों का भरमार यहां मेला है, लोकारण्य, लोकारण्य। और यहां है क्या? हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, यहां हाथी है, हाथी गिनगिना रही है, क्या हाथी कहते हैं, चिहाड़ रही है। निम्बारका क्या बोल रहा था मैं, कुरुक्षेत्र जाना है, रामलोक को बोलता हूं टिकट तुम्हारा करा देगा। तो हाथी वहां चिहाड़ रही है, गोटे गणगना रहे हैं, रथ का घर घर का आवाज आ रहा है। और कहती है, यहां कहती है लोकारण्य ताहा पुष्पारण्य, वाह क्या बात है, वह पुष्प का आरण्य है, वहां पर फूल ही फूल है। भृंग पिको नाद सुनी, वहां पर पक्षियों का, भौरों का गुनगुनाहट, पक्षियों का चारपिंग, चचहाट इत्यादि सुनाई पड़ती हैं। यहां राज वेश संगे सब क्षत्रिय गण, तहां गोप वेश संगे मुरली बादन। यहां पर आप राजसीय वेश में पड़े हुए और आपके संगी लोग हैं क्षत्रिय गण हैं, यहां पर यस सर और वहां पर तहां गोप वेश, वहां गोप वेश धारण कर करके मुरली वादन करते हुए ग्वाल बालों के साथ में हो, वहां पर कृष्ण ग्वाल बालों के कंधे पर चढ़ते हैं और जब हार जाते हैं तो उनको चढ़ाते भी हैं। क्या द्वारिका में ऐसा कभी हुआ है? क्या हस्तिनापुर में ऐसा कभी हुआ है? सोच भी कोई नहीं सकता है कि कृष्ण कंधे पर कोई चढ़े द्वारिका में, चढ़ाने का सोच सकते हाँ कृष्ण चढ़ जाए वो ठीक है, सब खुश रहेंगे। तो ये स्वर्य भाव बड़ा खतरनाक भाव है, माधुर्य भाव बड़ा आनंद का भाव है। माधुर्य भाव में ज्यादा आनंद आता है, ईश्वर भाव में उतना आनंद नहीं आता है। इसे सीखना चाहिए। हम लोग भक्त हैं, सीनियर हो जाते हैं, चाहे पोजीशन मिल जाता है तो हम भक्तों से मिक्स नहीं करते हैं। भक्तों से मिक्स करना चाहिए, उसमें ईश्वर भाव नहीं माधुरी भाव होगा। भक्तों से मिक्स नहीं करेंगे तो ईश्वर भाव बना रहेगा। मैं देखता हूं कभी कभी हम झाड़ू लेकर मारने, प्रभु जी आप मत मारिए, हम करते हैं, ये ईश्वर भाव है। और माधुरी भाव सब मिलकर के, सब बैठकर साथ में खाएं, सब साथ में नाचे गाएं, ये माधुरी भाव है। पता नहीं मेरे साथ में बार बार होता है, मैं कानपुर आता हूं तो वहां अलग भाव होता है। जो कानपुर के भक्त पूछ लेना आप लोग उनसे, यहां आता हूं ऑटोमेटिकली भाव अलग हो जाता है, पता नहीं क्यों। मैं चाहता नहीं हूं, मैं चाहता हूं भक्तों से मिलकर आना, वहां कर सेवा करते हैं, यहां कर सेवा कोई करने नहीं देता है। तो माधुर्य भाव बड़ा ही सुंदर भाव है और राधा रानी उसी भाव का वर्णन यहां पर कर रही है। ब्रजे तुम्हार संगे जेई सुख आस्वादन, सेई सुख समुद्रे यहां नाही एक कण। बाप रे बाप, कहती जिस सुख का आस्वादन हमने ब्रज में किया आपके साथ में, उसका एक कण भी यहां पर, एक बूंद भी नहीं दिखाई पड़ा है। आमालया पुनलीला करह वृंदावने, तबे अमार मनोवांछा होइत पूरणे। इसलिए कहती है कि हे कृष्ण, आप मुझको मेरे साथ वृंदावन चलिए और वहां पर मेरे मनोकामना पूरा कीजिए, वही लीला पुनः कीजिए। भागवते आछे छे राधिका वचन, पूर्वे तहां सूत्र मदे करिया छे वर्णन। तो राधा रानी का जो वचन था कहते हैं पहले मैं वर्णन कर चुका हूं और भी राधा रानी का ही ये है। सही भावावेश प्रभु पढ़े आर श्लोक, सही सब श्लोके अर्थ नहीं बुझे लोग। इस प्रकार से भावावेश होकर के इस भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 82 और 83 अध्याय के विभिन्न श्लोकों को भगवान चैतन्य महाप्रभु पढ़ने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिसका अर्थ सामान्य लोग नहीं समझ पा रहे थे। कौन समझ पा रहा था? स्वरूप दामोदर इसको समझ रहे थे, रूप गोस्वामी इसको समझ रहे थे और लिखते जा रहे थे, उसको याद करते जा रहे थे। स्वरूप असंगे आ अर्थ करे आस्वादन नृतम देश श्लोक करे न पठन। इस प्रकार स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी और प्रताप रुद्र और जितने घनिष्ठ भक्त लोग थे वे लोग समझ रहे थे और महाप्रभु नाच रहे थे इन श्लोकों को गा गा करके। हरे कृष्ण ही गा रहे थे, इन श्लोकों गाते थे और वो समझ रहे थे लोग। नृत्यमदे से श्लोक करे न पठन, नाचते हुए श्लोक गा रहे थे। आहुश्चते नलिन नाभ पदारविंद जोगेश्वरे हृदय विचिंत मगाध बोधय संसार कूप पतितो उत्तरावलंबम गेहम जुहा समय मनुष्यादिया सदा न। ये जब भगवान गोपियों से एक ज्ञान दे लिए तब राधा रानी, जैसे भगवान ने पूछा कि आप लोग हमको भूल तो नहीं गई हो ना, याद है ना, है ये श्लोक, अपि अस्मरथान सख्य हे सखियों मुझे आप लोग याद करती हो कि नहीं। तब उसी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक का व्याख्या दूसरे प्रकार से किए हैं। कहते हैं कृष्ण व्यंग के रूप में बात कहे थे और राधा रानी भी व्यंग के रूप में ये बात कृष्ण को जवाब दे रही है। अब ये जो श्लोक है इसका व्याख्या कैसे किए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो हम लोग उनके ही मुख से सुनेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इतना ही केवल, श्री स्वामी कहे हैं कि राधा रानी व्यंग की, अरे आप तो बड़े हो गए हैं, आप तो योगियों के हृदय में रहने वाले हैं, आपके दर्शन से संसारिक लोगों का दुख दूर हो जाता है, वे लोग मुक्ति संसार कूप पतितो त्राव अवलंबम, उन लोगों के उद्धार का अवलंबन आपका चरण कमल ही एकमात्र है। घर गृहस्थी वाले जो तप रहे हैं, मतलब आप इतने बड़े हो गए हो, ये ऐश्वर्यमयी बातें हैं राधा रानी कह रही हैं। ये जो बात है ऐश्वर्यमयी बात है, राधा रानी के मुख से ऐसा बात नहीं निकलेगा। वो कृष्ण को कभी ऐसा नहीं कहे कि आप योगियों को हृदय में निवास करने वाले हैं, आप दुखियों के जोगेश्वर आप हैं, ये सब वो तो श्याम सुंदर आप हैं, कृष्ण हैं, गोविंद हैं इत्यादि। अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन मने बने एक करी जानी तहार तुम्हारा पद द्वय कारा है यदि उदय तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। श्रीमत राधा रानी के भाव में श्री चेतन महाप्रभु ने कहा अधिकांश लोगों के लिए मन तथा हृदय हृदय एक होते हैं, किंतु मेरा मन कभी भी वृंदावन से अलग नहीं होता, अतएव मैं अपने मन और वृंदावन को एक मानती हूँ। मेरा मन पहले से वृंदावन है और चूंकि आप वृंदावन को पसंद करते हैं तो क्या आप अपने चरण कमल वहां रखेंगे, इसे मैं आपकी पूर्ण कृपा मानूंगी। हे प्रभु कृपया मेरी सच्ची विनती सुने, मेरा घर वृंदावन है और मैं वहां आपका सानिध्य चाहती हूँ, किंतु यदि मुझे सानिध्य नहीं मिला तो जीवन मेरा जीवन दुर्भर हो जाएगा। हे कृष्ण जब आप पहले मथुरा में रह रहे थे तब आपने मुझे योग था ज्ञान की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेजा था, अब आप स्वयं वही बात कह रहे हैं। अब राधा रानी अपने भाव में आ गई, किंतु मेरा मन उसे स्वीकार नहीं करता, मेरे मन में ज्ञान योग या ध्यान योग के लिए कोई स्थान नहीं है। यद्यपि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं फिर भी ज्ञान योग था ध्यान योग का उपदेश दे रहे हैं, ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा मैं अपनी चेतना आपसे हटाकर भौतिक कार्यों में लगाना चाहती हूँ, लेकिन लाख प्रयत्न करने पर भी ऐसा नहीं हो पाती, मैं स्वभाव से आपकी ओर उन्मुख हूँ, अतएव आपका यह उपदेश कि मैं आपका ध्यान करूं अत्यंत हास्यप्रद प्रतीत होता है। इस तरह आप तो मुझे मार डाल रहे हैं, आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप मुझे अपने उपदेश का पात्र समझें। तो इस प्रकार से पूरे अध्याय में आगे वर्णन किया गया है, आप लोग पढ़ लेना। तो राधा रानी का यह भाव था, वो चाहती थी कृष्ण को वृंदावन लाना और उसी भाव में राधा रानी रथ को खींच रही है और खींच करके वृंदावन की तरफ ला रही है। तो 9 बज गया, आगे कह सकते हैं, लेकिन जैसा कि सुबह अनाउंस किया गया है, प्रधान महाराज पंडाल में जगन्नाथ कथा कहेंगे, तो सुनने के लिए आप लोग वहां जाएंगे। और ये जो महाप्रभु का भाव है, आप लोग पढ़ लेना, और समय मिला तो कहीं बाद में हम लोग प्रणाम करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? 2-3 प्रश्न लेंगे बस, देर हो रही है, जाना चाहिए। ऑल राइट, एक लास्ट प्रश्न। चलो, ये हमारे प्रश्न वाले भक्त हैं, आजकल हरिदास का तबीयत खराब है तो दूसरे उनके।
हरे कृष्ण,
जोर से बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
उस पर डिपेंड मत करो, बोल चालू करो, चालू करो, बोलो बोलो बोलो।
हरे कृष्णा प्रभु जी। मन वृंदावन में है या वृंदावन मन में है, उसको आपने बड़े अच्छे से पिरोने की कोशिश करी उस भाव को, तो उसको मैं अपने शब्दों में कहूंगा कि अगर हमारा मन वृंदावन में है या हमने अपने मन को वृंदावन में उतार दिया तो समझ लीजिए कि कृष्ण हमारे साथ हो गए। अगर वृंदावन को हमने अपने मन में उतार लिया तो समझ लीजिए कृष्ण हमारे पास हो गए, दोनों हाथों में लड्डू है हमारे।
बिल्कुल।
और दूसरा कि शुरुआत में आपने सेवा के महत्व पर आपने टिप्पणी करी थी, तो उसमें मैं अपनी बात एक कहना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है, सेवा का महत्व सब समझते हैं, जैसे कि अभी मैं उदाहरण देता हूं, जैसे आपका प्रवचन खत्म होगा, यहां पर झाड़ू बहुरने का काम शुरू होगा, तो मान लीजिए कि 10 झाड़ू उपलब्ध है लेकिन आतुर है 25 जन उस झाड़ू से बहुरने के लिए, तो ऐसी पोजिशन पे मैं, कुछ लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनको नहीं मिलता है, भाग करके सीनियर लोग या अच्छे लोग पहले उठा लेते हैं झाड़ू, और कुछ लोग चाह रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे टाइम पे मैं अपने आप को सेवा से हटा लेता हूं और किसी और को मौका दे देता हूं, वो करेगा तो ज्यादा उस खुश हो रहा, तो मैं गलत हूं? किसी और के लिए अपनी सेवा त्याग कर देना, क्योंकि वो भी तो निराश हो रहा है, उसको नहीं मिल रहा है।
गलत भी हो नहीं भी हो, ये डिपेंड करता है आपके कॉन्शसनेस पर, आपका कॉन्शसनेस क्या है। कहीं दूसरे को सेवा का अवसर देने के लिए आप
छुपा हुआ अलग से न हो।
हाँ, यदि कॉन्शसनेस क्लियर है तो कोई तकलीफ नहीं है।
वो सही है।
ऑलराइट। श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ यात्रा महोत्सव की जय।